सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी। सुनो सुनो
जिसको सुनकर ज्ञानी भी जिसको सुनकर ज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी।
सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी।
ओम शांति। फिर से बोलो ओम शांति। जब हम यहाँ आकर बैठते हैं तो बाबा ने हम सब बच्चों को कौन सी विधि बतलाई है, जिस विधि को अपना करके यहाँ आके बैठो। मालूम है आप सबको, बाबा ने कहा जब भी क्लास में आके बैठते हो योग में तो पहले अपने को आत्मा समझ के बाबा की याद में बैठो। ये बात बाबा ने क्यों कही, आत्मा समझ के बाबा की याद में बैठो, क्योंकि जब तक हम आत्मा समझ के बाबा के याद में नहीं बैठेंगे तो कनेक्शन कैसे जुड़ेगा, बाबा से मिलन कैसे होगा। नहीं, जैसे दो तारों को मिलाना हो तो क्या करते हैं, रबर को हटाएंगे। अगर आप रबर सहती तारों को जोड़ दो तो करंट पास नहीं होगी। इसी प्रकार से मैं आत्मा शरीरधारी हूं और बाबा है शरीर से न्यारा, कैसे कनेक्शन जोड़े। जब मैं आत्मा भी इस शरीर से न्यारी होकर अर्थात तो आत्म स्मृति में रहकर बैठूंगी तब बाबा से मेरा संबंध जुड़ेगा। ये है जैसे आपने स्विच ऑन कर दिया, आपने स्विच ऑन किया, बटन ऑन किया तो लाइट जल गई। तो इसी प्रकार से आत्मा का मिलन परमात्मा से हो उसके लिए आप आत्म स्मृति में टिक जाओ। मैं ज्योति बिंदु आत्मा बैठा हूं, मैं भाई आत्मा को देख रहा हूं और बाबा से मिलन मनाना है, क्योंकि हमारी दृष्टि भाई भाई की भी पक्की होनी चाहिए। अगर भाई भाई की दृष्टि पक्की नहीं होगी तो हम फेल हो जाएंगे। नहीं, भले बाबा को भी देखते हैं लेकिन बाबा के साथ साथ जो बहन अथवा भाई यहां बैठता है उसके तरफ हमारी दृष्टि। और चेक करो अपने को कि सचमुच मैं आत्मा समझ के भाई आत्मा को देख रहा हूं, बाबा के याद में बैठा हूं। जब हम ऐसी स्मृति में बैठेंगे तो हमारी दृष्टि भाई भाई की पक्की हो। जब यहां हमारी भाई भाई की दृष्टि पक्की होगी तब बाहर आप कहीं भी चले जाओ, कैसे भी रूप रंग वाला मनुष्य आपके सामने आए लेकिन आपकी नजर उस पर आत्मा पर पड़ेगी, उसके रूप पर नहीं। क्यों, बाबा ने हम बच्चों को बार बार ये कहा है और वाणियों में हम रोज सुनते हैं, बच्चे किसी के नाम रूप को न देखो, किसी के नाम रूप में न फंसो, लेकिन सबको आत्मिक दृष्टि से देखो। आत्मिक दृष्टि होगी तो हम नाम रूप से परे रहेंगे, देखते हुए भी जैसे ना देखेगा। लेकिन आत्मिक दृष्टि हमारी पक्की नहीं है तो हमारा ध्यान उसके रूप पर जाएगा, ड्रेस पर जाएगा, हाँ, बोल पर जाएगा, और हम देहिक आकर्षण में, शारीरिक आकर्षण में आएंगे, और शारीरिक आकर्षण में गिराने वाला है, हमें भारी बना देता है, हमें विषयों के और ले जाता है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को ये पाठ पक्का कराया है कि तुम सब आत्माएं निराकारी हो, निराकारी होकर रहो, निर्विकारता में आओ, निरअहंकारी बन जाओ और निर्वैर और निर्भय हो जाओ। ये पांचों ही गुण तब मेरे में आ सकते हैं जब मैं आत्म स्मृति में। इसलिए ब्रह्मा बाबा के आगे जो भी बच्चा आता था, चाहे वो छोटा सा एक साल का गोदी का बच्चा है, चाहे वो 90 साल का बूढ़ा बाबा है, जो बाबा के सामने आता पहले बाबा उसको आत्म रूप में अच्छी तरह से, जैसे बाबा उसकी जन्म पत्री देख रहा है, तो बच्चे को देखकर बाबा कहता है बच्चे ये भी बड़ा होकर फूल बन जाए, कांटा न बने। इसलिए बच्चे को देखो तो भी आत्मा रूप में देखो, बाबा का बच्चा समझो। ऑर्गन्स छोटे हैं लेकिन शरीर तो आत्मा तो बड़ी है ना, वही है ना। और अगर बूढ़े को देखो तो भी उस आत्मा को देखो, युवा को देखो तो भी आत्मा रूप में देखो। इस पाठ को पक्का करना है हमें, क्योंकि ये पहला पाठ ही हमारा अंतिम पाठ है। इसलिए आजकल आप देखिए अव्यक्त बाबा भी जब आते हैं तो हम बच्चों को बीच बीच में ये ड्रिल कराते हैं कि अभी अभी एक मिनट के लिए डिटैच हो जाओ, शरीर से न्यारे हो जाओ, अशरीरी बन जाओ, बीच बीच में ये ड्रिल करो। जब हमारा ये पाठ पक्का हो जाता है, मैं आत्मा हूं, बाबा का बच्चा हूं, ये सब भाई आत्माएं हैं, तो हमारी दृष्टि रूहानी बनने से हमें बहुत सुख मिलता है। एक गीत चलता है ना, बाबा तेरा बनने से सुख मिलता इलाही है, खुशियों से बड़ी जीवन हर पल में कमाई है। अगर हम आत्म स्मृति में है तो बाबा की याद हमें जरूर आएगी, बाबा के समीपता का अनुभव, साथ का अनुभव करेंगे। इसलिए बाबा को हमने साकार रूप में क्या देखा कि हर समय उसके मुख में बाबा, ब्रह्मा बाबा के मुख में हर वक्त शिव बाबा। बच्चे बाबा को देखो, बाबा से बात करो। इस शरीर को देखते ये तो शिव ब्रह्मा का चोला है, ये पतित पुराना चोला है, तुम शिव बाबा को याद करके मेरे सामने आओ, शिव बाबा से वर्षा लेना है, शिव बाबा से तुम मिलने आए हो। हालांकि ब्रह्मा बाबा भी बहुत बड़ी अथॉरिटी, हमारा आदि पिता, अगर आदि पिता न होता तो हम अनादि पिता से कैसे मिलते, नहीं? इसलिए कहा ना, आदम को खुदा मत कहो आदम खुदा नहीं, खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। बाप दादा सदा कंबाइंड थे। हम बच्चों को भी ऐसा ही सदा कंबाइंड रहना है। इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार ये पाठ पक्का कराता है, मैं आत्मा हूं। जिसको भी देखो, जहां भी बैठो, जो भी कुछ कार्य करो, मैं आत्मा इन शरीर के कर्म इंद्रियों से कार्य कर रहा। तो आपकी आत्मा अंदर से शक्ति स्वरूप बनती जाएगी, संतुष्ट और शांत होती जाएगी, क्योंकि जितना मैं अपने पवित्र स्वरूप में रहूंगी उतना शांत, उतना प्रेम स्वरूप, उतना सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप का अनुभव होगा। तो इसलिए हम अभी फिर से मैं आत्मा बाबा की याद में बैठ, मैं आत्मा भाई आत्मा से दृष्टि ले रहा। कभी भी बाबा इन नैनों से आकर मिले, अगर आपकी नजर नीचे होगी या इधर उधर होगी तो बाबा आपको करंट भी देगा, आप ले ही नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं सामने देखो, मेरी ओर देखो। तो अभी हम 3 मिनट के लिए चलते हैं, हाँ, फिर से अपने स्वरूप में टिककर बाबा के पास। फिर सब हो गया शरीरी, हाँ? और बाबा ने हम बच्चों को सेवादारी बनाया, नहीं? आत्मा सेवाधारी, बाबा भी सेवाधारी बनकर इस सृष्टि पर आया। और सेवाधारी के लिए क्या कहा? सेवाधारी सदा निरअहंकारी होता है। और जो सेवाधारी समझ के चलता है, मैं आत्मा सेवाधारी, बाबा के साथ मैं सेवा पर उपस्थित हूँ, और पूरे कल्प में एक ही बार हम भगवान बाबा के साथ सेवादारी बनकर सेवा करते, और बाबा देखो कैसी सेवा करने के लिए आए हैं, पतित आत्माओं को पावन बनाने। मूत पलीती कपड़ धोने से बड़ा धोबी कमाल है, नहीं? कितनी बड़ी कमाल, स्वयं भगवान, हमने कभी सोचा ही नहीं था, स्वप्न में भी नहीं सोचा कि भगवान हम आत्मा रूपी मैली चोलियों को धुलाई करने आएगा। भले ग्रंथ में पढ़ते थे मूत पलीती कपड़ धोए, हाँ, लेकिन कब आया, कैसे आके धोता है, कैसे ये सेवा करता है, मालूम ही नहीं था। अब जब बाबा के बने तब पता चला कि अरे भगवान स्वयं धोबी बनकर आया है, हम मैली आत्माओं को स्वच्छ बनाने। कैसे स्वच्छ बनाता है? जैसे एक बाप एक माँ कैसा भी मैला बच्चा क्यों न है, जब प्यार में आते हैं तो उठा के गले लगाते हैं, चूमने लग जाते हैं, उसके मैल को नहीं देखते हैं, दूसरा देखेगा, लेकिन माँ बाप नहीं देखते हैं। क्यों? वो सेवादारी है, बच्चों के सेवादारी है। ऐसी परमात्मा को हम गाते चले आए, तुम मात पिता हम बालक तेरे। लेकिन उसने प्रैक्टिकल में सृष्टि पर आकर कैसे ये कार्य किया, ये इन आंखों से हमने देखा। हम कैसे कड़वे कटीले विषयी अशुद्ध आत्माएं बन गई थी, लेकिन बाबा ने हमें गले लगाया। मालूम ही नहीं था कि भगवान हमें गले लगाएगा, अपनी गोद में बिठाएगा। इतने बड़े बच्चों को, छोटे बच्चे को तो गोद में उठाना आसान है, गले लगाना अच्छा है, प्यारा लगता है, लेकिन हम बड़े बड़े बच्चों को भगवान आके गले लगाएगा, हमारा मस्तक चूमेगा, हमें गोद में बिठाएगा। बड़ा वंडर। और हमें मीठे बच्चे कहेगा। सचमुच उसने प्यार से, स्नेह से, हम जो मैली आत्माएं बन गए थे, मैल से भरे हुए बच्चे थे, उसने गले लगा लिए। मेरे मीठे मीठे लाडले बच्चे, सिकिलदे बच्चे, उसने हमारे मैलेपन को, कड़वेपन को, कटीलेपन को देखा नहीं, और उस स्नेह में, उस प्यार में हमें पानी पानी कर दिया, हमारी मैल को ले लिया। जैसे स्याही चूस होता है ना, हैं? वो कैसे स्याही को ले लेता है, ऐसे बाबा ने भी हमारे उस कड़वेपन को, कटीलेपन को ले लिया गले लगा। हमें ये महसूस कराया, अनुभव कराया, सचमुच हम मूल मूतपलिती आत्माएं। नहीं तो हमें क्या पता था, काम क्या है, क्रोध क्या है, लोभ क्या है, मोह क्या है, बड़े आराम से मस्त थे, चल रहे थे, और समझते थे हमारे जैसा कोई नहीं है। लेकिन उन्होंने आके हमें ये अनुभव कराया कि बच्चे, मैंने तो तुम्हें लक्ष्मी नारायण के रूप में भेजा, इतना सुंदर स्वच्छ बनाकर, और तुमने अपना रूप क्या बना दिया। ये महसूस कराया। जब महसूसता आई, तब हम फिर अपने को उस स्वरूप में लाने का पुरुषार्थ करने लगे। अगर महसूसता नहीं होती तो पुरुषार्थ कैसे करते। जैसे हम धूप में चलते हैं, पसीना आता है, वो होता है, तो सोचते ना अभी जाके स्नान करें, स्वच्छ हो जाए, अपने से ही बू आने लगती है। ऐसे ही उसने हमको ये अनुभव कराया, जो कहा, लागे चुनरी पे दाग, छुपाऊं कैसे, मैं बाबल से नजर मिलाऊं कैसे। भक्ति में तो आंख बंद करके, सिर नीचे करके बैठे, अपने को पतित नीच पापी कर समझने लगे, जहां देखना चाहिए वहां नहीं देख पाए, और जहां न देखना चाहिए वहां खड़े होकर देखने लग गया, तो मैल को और ही लेते चले, गंदगी को लेते चले, और भगवान के मूर्ति को देखने से हमें अच्छी प्रेरणाएं मिलती, वह आंख बंद करके सिर नीचे करके बैठे, उल्टे बन गए ना। तो बाबा ने बताया, उल्टा कौन होता है, उल्लू होता है। नहीं तो हम भी ऐसे उल्टे बन गए, अंधेरी रात में, अज्ञानता का अंधकार था ना, उस अज्ञानता के अंधकार में हम भी भगवान बाबा को भूलकर, अपने आप को भूलकर, अपने सच्चे स्वरूप को भूलकर, अपने असली घर को भूलकर उल्टे हो गए और इन सब कर्म इंद्रियों से उल्टे कर्म कर रहे, इसलिए मैले होते चले गए। पर बाबा ने कहा, बच्चे मेरी ओर देखो, हैं? अपने को शुद्ध आत्मा समझ के बैठो। ये नहीं कहा अपने मैली आत्मा हो, कैसी हो, नहीं कहा, तुम शुद्ध आत्मा हो, मेरे बच्चे हो, तुम नारायण के स्वरूप हो। तब हमारी नजर बाबा की ओर सामने देखने लगी, बाबा से नजर मिला पाए हैं और उस नजर से वो मैल लेता गया, हमारे से हमको बढ़ता गया, अपना बनाता चला गया, हमें अपने प्यार में, अपने शक्तियों में, अपने गुणों में भरपूर करता गया, हमारी भूख मिटाता गया, हम भूखे थे। आप देखो, जो भूखा इंसान होता है ना, वो प्यार से बात नहीं कर सकता, जब तक उसको भोजन न दो, पेट न भरो, वो चिड़चिड़ा होता है, क्रोध करता है। तो आज हम सब मनुष्य आत्माएं भूखे थी, क्या भूख थी हमें, खा भी रहे थे, पहन रहे थे, सब कुछ था हमारे पास, फिर भी भूखे थे। आत्मा का जो खुराक थी, खजाना था, उससे भूखे, न शांति थी, न प्यार था, न शक्ति थी, न गुण था, न खुशी थी, हाँ थी भी तो बाहरी थोड़े समय की, और उसमें भी दुख भरा हुआ, अल्पकाल की। तो बाबा ने आकर हम बच्चों को अपने से नजर मिलाकर, हे आत्मा मेरी ओर देखो, मैं आया हूं निहाल करने के लिए, तुम बेहाल हुए पड़े थे, माया ने बेहाल कर दिया था, भूखा बना दिया था, और बाबा ने आकर हमें निहाल किया, नजर से अपना बना दिया और हमें सच्चा मुस्कुराना सिखाया, हमें खुशी का खजाना दिया, खुशी की खुराक खिलाई, वो सच्चा रूहानी प्यार दिया जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, मतलब नहीं बराबर, निस्वार्थ प्यार, और हर समय मीठे बच्चे। कोई ऐसा बाप होगा जो हर समय मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिले दे बच्चे कहकर हमें हर वक्त पुचकार दे, प्यार दे। उसके आगे 90 साल का बूढ़ा आया तो भी गोदी में बिठा दिया, या उसके गोदी में चला जाता था, मैं तेरा बालक तू मेरा बालक, वो भी देखने के दृश्य थे बड़े, मैं तेरा वारिस तू मेरा वारिस। और छोटा सा बच्चा आया तो भी उसको गोद में ले लिया। तो भागवत में क्या है, भगवान के चरित्र है, गीता में ज्ञान है, कर्म गति का ज्ञान, आत्म स्मृति की पहचान, मेरे साथ हर समय तुम्हारा संबंध कैसे जुड़ा रहे, उसकी विधि बतलाई कि बच्चे शुद्ध अन्न खाओ, सत्संग करो, है? ये दो बातें विशेष हमको बाबा के याद में मदद करती है। बाबा हर समय कहता है, बच्चे भोजन बनाओ, बाबा के याद में बनाओ, बाबा के लिए प्रसाद बना रहे हैं, शुद्धि से बनाओ, प्रेम से बनाओ। तो ये सबसे बड़ी सेवा, फिर जो खाएंगे उसमें भी, उनमें भी वो प्यार पैदा होगा, उनमें भी मन की स्वच्छता शांति आएगी। विधि बताई कैसे तुम्हारा संबंध मेरे से सदा जुड़ा रहे। शुद्ध अन्न खाओ, बाबा के याद में खाओ, बाबा को भोग लगा के खाओ, बाबा के साथ खाओ, कहां भी जाओ कंबाइंड हो करो, बाबा मेरे साथ है। और संग देखो सदा, हर कर्म करते बाप के संग में, बुद्धि का संग मेरे से। अगर तुम इधर उधर की फालतू बातों में, फालतू संग में रहे, तो मेरे साथ मन कैसे लगेगा, बुद्धि का योग कैसे जुड़ेगा। क्योंकि अनेक जन्मों की हम बच्चों को आदत बनी हुई है देह भान में, देह अभिमान में आने की, इधर उधर की फालतू बातें करने की, परचिंतन की बातें, व्यर्थ बातें, बीती बातें, जो हमें बाबा से बुद्धि का योग जोड़ने नहीं देती है। इसलिए जब हम मधुबन में आते थे, बाबा ज्यादा तो पांडव भवन में ही उस समय बाबा थे, तो कोई भी दो चार बच्चे आपस में इकट्ठे खड़े हो जाते थे, बाबा चुपके से पीछे आके खड़ा हो जाता, सुनने लगता था बच्चे क्या बातें करते हैं, टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से बाबा हम बच्चों का पर अटेंशन रखता था। बच्चे पुरुषार्थ की लेन देन करो, आपस में स्व उन्नति की पॉइंट्स एक दूसरे से पूछो, फालतू बातों में टाइम वेस्ट न करो। तो एक एक बात बाबा हम बच्चों को सिखाते, जैसे छोटे बच्चे को माँ बाप पढ़ाते हैं, पहले टीचर माँ बाप होते हैं। तो बाबा ने मात पिता बन करके प्यार भी दिया, प्यार की पालना दी, अपने गले लगाया और टीचर बनकर पढ़ाया और पूरा बच्चों पर अटेंशन रखा कि बच्चे अपना टाइम, अपनी शक्ति, अपने स्वास्थ्य व्यर्थ न गवाए। क्योंकि संगम युग की जो घड़ियां हैं, ये अति अमोलक घड़ियां हैं, ये फिर वापस नहीं आनी, फिर कलप के बाद। इस समय जैसा हम करेंगे वैसी हमको प्राप्ति होगी, और समय को वरदान मिला हुआ है एक का पदम गुना। एक कदम आप बाबा के याद में उठाओ, पदम कदम बाबा आपके आगे आएगा। एक हिम्मत का बाबा पदम गुना मदद तुमको बच्चों को मिले। तो कहां एक का पदम गुना हमारा जमाओ, और अगर हम व्यर्थ गवाएंगे तो एक का पदम गुना हमारा कट भी जाएगा। कहना आपका भाग्य आपके हाथ में है, चाहे तो आप राजाओं के राजा बनो और चाहे तो आप दास दासी बनो, चाहे सदाओं के बागी बनो, ये हम बच्चों के हाथ में। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को कर्म गति का ज्ञान दिया, और हमें अपना स्वमान बार बार स्मृति में दिलाया, बच्चे तुम कौन हो, आत्मा तो हुई लेकिन पवित्र आत्माएं, विशेष आत्माएं, सारे चक्र के अंदर हीरो आत्माएं, तुम कल्प वृक्ष की तना हो, स्वयं भगवान की रचना हो। कितने मीठे मीठे बाबा ने हमें स्वमान स्मृति में दिलाए। अगर हम इन सब बातों को याद रखें तो हम सदा नाचते रहे। जो गोप गोपियों को दिखाया नाचते रहे, उन्होंने तो शारीरिक नाच दिखाया, हाँ सदा रास करते रहे भगवान के साथ, लेकिन वास्तव में ये मन की रास है। जितना हम मन से इन सब बातों का मनन चिंतन करते हैं, मुख से यही लेन देन करते हैं, कर्म से सदा सेवक बनकर कार्य करते हैं, दृष्टि से सदा सबको आत्म मीठी नजर से, भाई के दृष्टि से देखते हैं और वाणी से मीठा बोल बोलते हैं, तो हमारा जमा का खाता भी बढ़ता है और हम मन से सदा नाचते रहे, सदा खुश रहे, सदा हर्षित चेहरा, और आत्मा अंदर ही अंदर भरपूर होती जाएगी, तृप्त होती जाएगी। जो अभी अव्यक्त बाबा की वाणी पिछले संडे की चली या उससे पहले की, बाबा ने कहा बिल्कुल आत्मा तृप्त होती जाएगी भरपूर, और जो भरपूर आत्मा है उसकी नजर कहीं नहीं जाएगी, उसकी दृष्टि भटक नहीं सकती है। तो हमें अपने स्वमान में, अपने जो बाबा ने हमें इतने अच्छे सुंदर टाइटल्स दिए, उसको मनन करती रहो, उसका जाप करते रहो, अपने को हर समय स्मृति दिलाते रहो। तो जितना हम स्मृति स्वरूप होते रहेंगे, उतना हमारा इस देह से, संबंध से, वैभव से, व्यक्तियों से मोह नष्ट होता जाए। और जितना स्मृति में होंगे उतना अंदर ही अंदर मस्ती और खुशी चढ़ी रहेगी। जितना स्मृति में होंगे उतना विकर्मों से बचे रहेंगे। तो सारी बात जो रोज बाबा हम बच्चों को मुरली सुनाते हैं, क्लास करवाते हैं, अगर हम ना करें तो जो 63 जन्मों के संस्कार है वो हमें कुछ भी न करने देंगे। इतना करने के बाद भी हम युद्ध कर लेते हैं, कुछ न कुछ कर बैठते हैं। इसलिए बाबा बार बार हम बच्चों को सावधान करता है, रोज क्लास के लिए भाई सुबह उठ के मेरे से रूह रहान करो, क्लास करो, हाँ फिर आपस में पुरुषार्थ की लेन देन करो, मधुबन में आओ तो हर समय फिर 10 बजे की क्लास करो, फिर रेस्ट करो, भोजन खाओ, फिर क्लास करो, योग करो। क्यों? बहुत जन्मों की मैल चढ़ी हुई है आत्मा पर, कड़े संस्कार बने हुए हैं, उनको बदलना आसान नहीं है। इसलिए बाबा हमको ऐसा संग दे रहा है, हमें रूहानी रंग में रंग रहा है। और इस समय जो भगवान ने बच्चों के साथ कर्तव्य किया, उनके इतने शास्त्र बड़े हुए हैं, इतनी गाथाएं हो रही हैं, और भगवान फिर से अपना कार्य कर रहा है, कितनी बड़ी चीज है। हमारे सामने हमारे यादगार है, ग्रंथ है हमारे, जो अनुभूतियों के गुरु गाथा ही कर रहे हैं, लोग तपस्या ही कर रहे हैं, उससे मिलने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, और वहाँ सहज रूप में यहाँ बाबा हमसे मिलन मनाने आए। कोई हमने तप नहीं किया, लेकिन अगर हम फिर भी थोड़े अलबेले रहे तो उसका बागी कौन? हम ही बने, हमें ही उसका फल मिले। इसलिए बाबा कहते हैं ना, बच्चे अलबेलाई और आलस्य को छोड़ो, ये समय है बाबा से लेने का, भरपूर होने का, बैलेंस में रहने का, मिलन मनाने का, मौजों में रहने का, मूंजो नहीं। बाबा हर बात वाणी के अंदर क्लियर करके बतलाता है। मुरली में ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो हमारा हल न होता। आपके अंदर प्रश्न उठा, उसी दिन बाबा के मुरली में उसका हल मिल जाता है। और क्या करें, नहीं, इतनी बढ़िया चीज बाबा हम बच्चों को खजाना दे रहा है, अब हमें भरपूर होना है। और एक जन्म के लिए नहीं, पर 21 जन्म का काता जमा करना है। तो कितनी खुशी, आराम से चल के हम खाते हैं। तो ये सदा ध्यान रहे कि भगवान बाबा हमें सन्मुख पर आ रहा है, पालना कर रहा है, हमें मौजों में ला रहा है, हमें अपनी नजर से निहाल कर रहा है। हमारे जैसा भाग्यवान और कौन होगा? ऐसी बातें करते हुए अपने आप को ऊंचा उठाना है, अपने पर अटेंशन रखना है, बस और कुछ नहीं करना है। अटेंशन प्लीज, जो बाबा कहते हैं अटेंशन प्लीज, माना ओम शांति। एक दूसरे को ओम शांति करो तो भी अटेंशन आ जाएगा, भाई मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मुझे अपने उस स्वरूप में अपने को टिकाना है। तो हल्के रहोगे, क्यों? आत्मा है ही लाइट, लाइट हल्की है, पवित्र है, इसलिए हम नमस्कार करते हैं। लाइट सदा ऊंची, लौ सदा ऊपर होती है, तो जितना हल्के होंगे अपनी बुद्धि हमारी ऊपर रहेगी, हम इस विषय सागर से तैर के पार होते जाएंगे। अगर भारी रहे तो डूबते रहेंगे, दुख उठाते रहेंगे, दुख देते रहेंगे। तो बाबा कहते बच्चे इन सब से ऊपर हो जाओ। भाई अनुभव तो बहुत बड़े बड़े हैं, टाइम तो जल्दी भाग जाता है। तो बाबा तो इस पांडव भवन में, तब तो छोटा सा पांडव भवन था जब बाबा साकार में थे, और हम लोगों ने इस पांडव भवन में पहरा भी दिया है, चौकीदार का काम किया है रात को। हैं, बाबा कहते थे टार्च लियो, लाठी उठाओ, टोपी पहनो, विसिल लो और पहरा दो सारे पांडव भवन का। आजकल भाई देते ना, तो निर्भय बनने के लिए, भाई तुमको डर तो नहीं लगता है, तो निर्भय बनाया बापू। आत्म स्मृति में रहोगे तो निर्भय होगे, निर्भय बन के पहरा दोगे, नहीं तो डर लगेगा, देखो बाबा मेरे साथ है, मैं अकेली पहरा नहीं दे रही हूँ। तो दो दो बहने हम पहरा देते थे, बाबा ने सब बातें सिखाई, भाई मुरली भी सुनाओ, खाना भी बनाओ, पहरा भी दो, और हर प्रकार का कार्य, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। क्यों? हम सब सेवादारी, सेवादारी को जिस समय जो आर्डर मिला उस समय वो कार्य करना है। जी हजूर, जैसे बाबा जी हजूर करता है, हम बच्चों को भी जी हजूर करना है। तो इस तरह से बाबा ने हम बच्चों को थोड़ा सा अपना साथ देकर, जैसे एक बालक को माँ बाप सिखाते हैं, ऐसे बाबा ने हम बच्चों को सिखाया। और सचमुच आप जितना आत्म स्मृति में रहोगे ना, उतना आप अनुभव करोगे कि आप निर्वैर, निर्विकारी, निरअहंकारी बनते जाएंगे। किससे वैर करें, सब मेरे भाई है। और समीपता का अनुभव, अंदर स्वच्छ, जितना मन मेरा स्वच्छ होगा उतना समीपता। नहीं तो आज देखो, दो भाई एक घर में बैठे हैं तो भी समीप नहीं है, क्योंकि मनों से मिले हुए नहीं है, मन में मैलापन है। तो बाबा ने ये मैलापन हमारा निकाला, इसलिए हमें सब अपने लगते हैं। हम दूर होते भी एक दो के समीप, परिवार है, ब्राह्मण परिवार है, तो वो महसूस था। मन को स्वच्छ बनाओ। हाँ, स्वच्छ आस्थान पर मूर्ति रखी जाती है ना, तो मन जितना मेरा स्वच्छ होगा उतना बाबा भी सदा मेरे साथ रहेगा, खुशी भी मेरी बनी रहेगी, दूसरे को भी मैं अपना बना सकूंगी। हम दूर होते भी समीप रहेंगे, नहीं तो समीप होते भी दूरियां। हाँ, वो एक गीत चलता है, हाय रे इंसान की मजबूरियां, पास होते भी कितना दूरियां। हाँ, लोगों ने गीत तो बहुत बनाए, क्यों दूरियां हुई? क्योंकि मनों में स्वार्थ आ गया, मैलापन आ गया, मेरे मेरे में फंस गए, इसलिए दुखी हो गए, मैं और मेरा। बाबा ने आकर हमारी ये धुलाई की है। हाँ, जो धुलता जाएगा अच्छी तरह, उसका मेरापन समाप्त हो जाएगा।